From the conference center at Temple Square,
सॉल्ट लेक सिटी में टेंपल स्क्वायर स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां वार्षिक महासम्मेलन का रविवार सुबह का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। ये प्रसारण बॉनेविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग इस सत्र का संचालन करेंगे।
भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर में जनरल सम्मेलन के 187वें वार्षिक रविवार सुबह अधिवेशन में इस वसंत ऋतु के सुंदर दिन में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने मुझसे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम अपना आपके लिए जो इस संसार भर में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट द्वारा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं का स्वागत करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा मैक विल्बर के निर्देशन अंतर्गत रिचर्ड एलियट के साथ और एंड्रयू अंसुअत ऑर्गन पर संगीत प्रदान करेंगे। गायक मंडली इस सभा का आरंभ प्रेस फॉरवर्ड सेंट्स और अब हमारे पक्ष के साथ नाउ लेट अस रिजॉइस के साथ गाकर करेंगी और प्रारंभिक प्रार्थना सिस्टर नील एफ मैरियट युवतियों के जनरल अध्यक्ष में द्वितीय सलाहकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद गायक मंडली लव स्पोकन हियर गाएगी।
Thank you. Beloved Father in heaven.
हे प्रिय पिता, हम खुशी से यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि इस जनरल कॉन्फ्रेंस का आनंद उठा सके, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बचावकर्ता प्रभु यीशु मसीह और गॉस्पल के लिए, हम अपने प्रॉफिट थॉमस स्पॉन्सन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आशीषित करे, पिता उन सबको आशीषित करे जो गायन मंडली में गीत गाते हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा का प्यार महसूस कर पाए और हम पे आपकी कृपा बनी हो, और जिससे हमारा विश्वास बढ़ जाए और हम एक दूसरे से प्यार करें और हम अनंत तक आपके साथ रह पाएं। और प्रभु यीशु के मसीह में ये कहते हैं, आमीन।
It will now be our great privilege to hear from our prophet.
हमारे भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस स्मॉनसन को सुनने का अब हमारा सौभाग्य होगा। उनके पश्चात सिस्टर जॉय डी जोन्स, जिन्हें पिछले अप्रैल में प्राथमिक जनरल अध्यक्षता के रूप में समर्थन किया गया था होंगी। उनके पश्चात सिस्टर जोन्स को हम एल्डर यून वॉन चोई 70 से सुनेंगे। उसके बाद एल्डर रोनल्ड ए रेजबैंड हमें संबोधित करेंगे।
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत गर्म जोशी से आपको अभिवादन करता हूं जब हम दोबारा अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे में मिलते हैं। अपने संदेश को आरंभ करने से पहले मैं 5 नए मंदिरों की घोषणा करना चाहता हूं, जिनका निर्माण निम्न स्थानों पर किया जाएगा: ब्राजील, रियो नेनेवा, फिलीपींस एरिया, रोबी केनिया, पोकिटोलो आयडो, सेरेटन स्टिंग्स यूटा। आज मैं मॉर्मन की पुस्तक की शक्ति और इस गर्जे के सदस्य के रूप में इसका अध्ययन, मनन और शिक्षाओं को हमारे जीवनों में पालन करने का अत्याधिक आवश्यकता के विषय बोलूंगा। मॉर्मन की पुस्तक की दृढ़ और पक्की दवाई गवाही होने के महत्व को अधिक बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला जा सकता। हम अत्यधिक अशांत और दुष्टता के समय में रह रहे हैं। कौन आज हमारे संसार में व्याप्त पाप और बुराई से हमारी सुरक्षा करेगा? मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उसके सुसमाचार की मजबूत गवाही हमें शुरू से अंत तक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। यदि आप प्रतिदिन मॉर्मन की पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ें। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक और सच्चाई जानने की इच्छा से पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा इसकी सच्चाई आपको प्रकट करेगी। यदि यह सच्ची है, और मैं दृढ़ता से गवाही देता हूं कि यह सच्ची है, तो जोसेफ स्मिथ भविष्यवक्ता था जिसने पवित्र परमेश्वर पिता को और उसके पुत्र यीशु मसीह को देखा था। क्योंकि मॉर्मन की पुस्तक सच्ची है, इसलिए अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा यहाँ पृथ्वी पर और परमेश्वर का पवित्र पौरोहित्य उनकी संतानों के कल्याण और आशीष के लिए पुनर्स्थापित किया गया है। यदि आपके पास इन बातों की मजबूत गवाही नहीं है तो इसे पाने के लिए जो आवश्यक है उसे करें। यह जरूरी है इन कठिन समय में आपके पास अपनी स्वयं की गवाही हो, क्योंकि दूसरों की गवाही कुछ समय तक ही आपको कुछ मदद करेंगी। हालांकि एक बार प्राप्त करने के बाद गवाही को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और प्रतिदिन की प्रार्थना और धर्मशास्त्र का अध्ययन के द्वारा सक्रिय और जीवित रखने की जरूरत होती है। मेरे प्रभु के मेरे प्यारे भाई और साथियों, मैं हम सबों से प्रतिदिन मॉर्मन की पुस्तक का प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करने की विनती करता हूं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रलोभन और का विरोध करने, संदेह और भय को हराने और अपने जीवनों में स्वर्ग की मदद पाने के लिए आत्मा की वाणी सुनने की योग्यता करता हूं। मैं यह गवाही अपने संपूर्ण हृदय से देता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
We love you, President Monson. हम आपसे प्यार करते हैं प्रेसिडेंट मॉन्सन। डेढ़ साल पहले अध्यक्ष रसल एम नेल्सन ने एक पाप प्रतिरोधी वंश को शिक्षा और मदद को पोषण करने की जरूरत पर वार्ता दी। एक पाप प्रतिरोधी वंश कहावत मेरे अंदर आत्मिक स्वर को गहराई से प्रभावित करती है। हम बच्चों का आदर करते हैं जो शुद्ध और आज्ञाकारी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मेरे पास दुनिया भर के बहुत से बच्चों के सामर्थ्य की गवाही है। वे लचीले, स्थिर, अटल और अचल खड़े रहते हैं विभिन्न चुनौती भरी परिस्थितियों और वातावरण में भी। ये बच्चे उनकी पवित्र पहचान, स्वर्गीय पिता के प्रेम और उसकी इच्छा को दृढ़ता से खोज कर पालन कर समझते हैं। फिर भी यहाँ पर बच्चे हैं जो अटल और अचल रहने में संघर्ष करते हैं और उनके कोमल मन घायल होते हैं। उनके ऊपर चारों ओर से विपत्ति के उग्र तीरों से हमला होता है और उन्हें पोषण और सहायता की आवश्यकता होती है। वे हमारे लिए आगे बढ़ने के कदम के लिए बाहरी प्रेरणा है और हमारे बच्चों को मसीह में लाने के लिए पाप के विरुद्ध एक युद्ध चालू करने का हमारा प्रयास है। सालों पहले के एल्डर ब्रूस और मैकॉन्की के शब्दों को सुने। गिरजे के सदस्यों के रूप में हम बहुतायत से संघर्ष में व्यस्त हैं। हम युद्ध में हैं। हमारे पास मसीह के कारण लूसीफर के विरुद्ध लड़ने की सूची है, महान युद्ध जिसका रोष हर तरफ है और जिसका दुर्भाग्य से बहुत ही जानी नुकसान कुछ धुंधले परिणाम होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी इस युद्ध में निष्पक्ष नहीं हो सकता है। आज युद्ध लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लड़ाई ने हम सबको छू लिया है और हमारे बच्चे विरोधियों का सामना करते हुए सामने की पंक्ति में खड़े हैं, ताकि हमारे लिए तीव्रता की जरूरत हमारे आत्मिक बल की प्रणालियों पर होती है। बच्चे दृढ़ता से पाप प्रतिरोधी बनकर एक कार्य कर रहे हैं और अभिभावकों, दादा दादी, परिवार सदस्यों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के लिए आशीष है। हम सबके पास सहायता करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने उनके बच्चों को सिखाने के विशेष निर्देशन दिए थे, पश्चाताप करने के, जीवित परमेश्वर पिता के पुत्र मसीह में विश्वास, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का उपहार के सिद्धांत को समझना है और प्रार्थना करना और प्रभु के सम्मुख सीधे चलना है। अपने बच्चों की ज्योति और सच्चाई में कैसे लाएं? एक चुनौती भरा प्रश्न हो सकता है। तब से यह हर परिवार और प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत है, परंतु स्वर्गीय पिता ने संपूर्ण संसार के लिए मार्गदर्शन की रूपरेखाएं दी हैं, जो कि हमारी सहायता करेंगी। आत्मा हमें अति प्रभावित तरह से प्रेरित करेगी हमारे बच्चों का आत्मसंचार करने में। शुरुआत में इस जिम्मेदारी की महत्ता के दूरदर्शी होना जरूरी है। हमें समझना आवश्यक है हमारे और उनके पवित्र पहचान और उद्देश्य को हमारे बच्चों की मदद करने से पहले कि वह कौन है और क्यों वह यहाँ है। हमें उनकी मदद बिना किसी प्रश्न के करनी चाहिए कि वे स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं और कि वह हमसे उम्मीद रखता है। दूसरा, पश्चाताप के सिद्धांत को समझना आवश्यक है पाप से बचे रहने के लिए। पाप से बचे रहने का मतलब पाप रहित बने रहना नहीं है, परंतु इसमें लगातार पश्चाताप करना, सतर्क और साहसी बने रहना है। शायद पाप प्रतिरोधी बने रहना, जैसे आशीष पाप से बने रहने के आती है। जैसे याकूब ने कहा था, शैतान का सामना करो, वह तुम्हें तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। योद्धा वे अत्यधिक साहसी थे, परंतु देखो ये सब कुछ नहीं था। ये वे हर समय किसी भी प्रकार के सौंपे गए कार्य में सच्चे थे। हाँ, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उनके सीधे मार्ग पर चलना सिखाया गया था। ये युवा पुरुष मसीह के गुणों को युद्ध में उनकी वपत्ति के बावजूद के विरुद्ध औजार के रूप में लेकर गए थे। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन हमें याद दिलाते हैं कि प्रोत्साहन की बुलाहट हमारे लिए लगातार आती है। हर दिन हमारे जीवन के लिए प्रोत्साहन का जरूरत है, न कि सिर्फ महत्वपूर्ण आयोजनों पर, परंतु अक्सर जब हम निर्णय लेते हैं या हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों के जवाब में। हमारे बच्चों ने आत्मिक औजारों को पहन लिया है, जैसे उन्होंने रोज के व्यक्तिगत शिष्यता के नमूने की स्थापना की थी। शायद हम बच्चों की योग्यताओं को कम आंकते हुए रोज की शिष्यता की धारणा को समझते हैं। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग हमें सलाह देते हैं, जल्दी शुरू करो और स्थिर रहो। तो तीसरी कुंजी बच्चों की सहायता पाप प्रतिरोधी बनना बचपन से शुरू कर देना है। सुसमाचार सिद्धांत के प्रिय मोल तय करना धर्मशास्त्रों से, विश्वास के अनुच्छेदों से, युवा समर्थ की पुस्तिका, प्राथमिक गीतों, स्तुति गीतों और हमारी अपनी व्यक्तिगत गवाहियों से, जो कि बच्चों को उद्धारकर्ता की ओर ले जाएंगी। प्रार्थना करने, धर्मशास्त्र अध्ययन, परिवार घरेलू संध्या और सस्तब्ध आराधना करने की आदत को लगातार बनाए रखना अंदरूनी स्थिरता और मौलिक मूल्यों की प्रबलता, दूसरे शब्दों में आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर करती है। आज के संसार में जहाँ पर पवित्रता के पास सब कुछ है परंतु अदृश्य हो जाते हैं, हमारे बच्चों को सच्ची पवित्रता क्या है को समझने का अधिकार है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? विशेषकर जब हम उसको बनाने की तैयारी करते हैं और बपतिस्मा पर और मंदिर में। जैसे मेरी सुसमाचार का प्रचार शिक्षा देती है, वचनबद्धता लोगों को, युवा लोग भी शामिल हैं, पवित्र अनुबंधों का पालन करने पालन करने की तैयारी कराती है। एल्डर जेफरी और हॉलिंस सिखाते हैं, जब हम अनुबंध रखने की बात करते हैं, हम हमारे नश्वरता के हमारे उद्देश्य हृदय और आत्मा के बारे में बात करते हैं। यह बनाने में असाधारण सामर्थ्य है और हमारे स्वर्गीय पिता के साथ अनुबंध का पालन करने में। विपत्ति इसे जानती है तो वह अनुबंध बनाने के स्पष्ट धारणा है। बच्चों को समझने बनाने में मदद करें और पवित्र अनुबंधों का पालन करना एक अन्य कुंजी है पाप रहित वंश बनाने की। हम कैसे अपने बच्चों को पवित्र अनुबंध बनाने और पालन करने के लिए तैयार करें, जैसे वे अनुबंध पद के साथ प्रवेश और उन्नति करते हैं। बच्चों को साधारण वादों का पालन करना सिखाएं, जब वे युवा होंगे पवित्र अनुबंधों को आगे जीवन में पालन करने के लिए सशक्त होंगे। चलिए मैं एक साधारण सा उदाहरण बांटती हूँ। पारिवारिक घरेलू संध्या में एक पिता ने पूछा, हम कैसे एक साथ परिवार में कर रहे हैं। 5 साल के लीजे ने शिकायत की कि उसका बड़ा भाई केविन उसे बहुत तंग करता है और उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। केविन झिझकते हुए बोलता है कि लीजी सही है। केविन की माँ उससे पूछती है कि वह कैसे अपनी बहन से अच्छा रह सकता है। केविन सोचता और निर्णय लेता है कि वह लीजी से वादा करता है कि वह पूरा एक दिन उसे बिना तंग करे रहेगा। अगले दिन के समाप्त होने पर प्रत्येक जन परिवार प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। केविन के पिता केविन से पूछते हैं कि उसने कैसा किया। केविन का जवाब था, पिताजी मैंने अपना वादा रखा। लिजी प्रसन्नता से सहमति देती है। परिवार केविन को शुभकामनाएं देता है। केविन की माँ तब सुझाव देती है कि यदि वह अपना वादा एक दिन के लिए रख सकता है, वह उसे 2 दिन के लिए क्यों नहीं रख सकता। केविन दोबारा से उसे रखने की कोशिश पर सहमत होता है। 2 दिन बीतते हैं, केविन अपने वादे को रखने में सफल होता है। लिजी यहाँ तक अधिक धन्यवाद करती है। जब उसके पिता पूछते हैं कि वो इस वादे को अच्छे से रखता है, केविन कहता है, मैं अपना वादा रखता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं रखूंगा। एक छोटा सा उत्तराधिकार वादा रखने की सफलता को प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। वादा रखने का लगातार अभ्यास करना बच्चों के लिए आत्मिक जिम्मेदारी है। उनके पहले बपतिस्मा का और पवित्र आत्मा के अनुबंध को प्राप्त कर रखने का, जहां पर वह परमेश्वर की सेवा करने का अनुबंध करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वादा और अनुबंध अविभाज्य है। डेनियल की पुस्तक में हम शद्रक, मेशक और अमेनिको का राजा की मूर्त की उपासना करने से इनकार करने से सीखना है। राजा उन्हें चेतावनी देता है कि वह उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल देगा यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं। वे इनकार करते हुए कहते हैं, हमारा परमेश्वर इसकी उपासना करते हैं, वे हमको उस धटके हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। परंतु यदि नहीं, इन 30 शब्दों के अर्थ पर विचारें और कैसे ये अनुबंध रखने से मिलते हैं। इन 3 युवा पुरुषों ने अपने आज्ञाकारी होने के आधार को छुटकारा पाने पर किया था। यहाँ तक वे छूटे भी नहीं थे, उन्होंने प्रभु के किए अपने वादे का पालन किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे कर सकते हैं। अनुबंधों का पालन करना हमेशा से हमारी परिस्थिति पर निर्भर होता है। ये 3 युवा पुरुष वीर योद्धाओं के समान हमारे बच्चों के लिए पाप प्रतिरोधी होने के अद्युत उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण हमारे घरों हमारे परिवार में लागू किए जाएं? नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा। हमें बच्चों को छोटे निवाले में सफलता को चखाना है। जैसे वे अपने वादों को रखते हैं, वे आत्मा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। एल्डर जोसेफ बी वर्टलिन ने सिखाया था कि सत्य निष्ठा के इनाम को लेना पवित्र आत्मा के साथ हमेशा रहना है। तब हमारे बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रबलता से भरोसे के साथ होंगे। सत्यनिष्ठा शत्रु की दीवार से बाहर पाप प्रतिरोधी वंश है। भाइयों और बहनों, अपने छोटों को पकड़े रहो इतना पास कि वे हर दिन आपके धार्मिक व्यवहार को और आपके वादों का अनुबंध पालन करते देखें। बच्चे बड़ी नकल करने वाले होते हैं तो उन्हें कुछ बड़ी नकल करने वाला देना है। हमें वास्तव में पाप प्रतिरोधी वंश को सिखाने में और बढ़ाने में मदद करनी है। प्रभु के वचन द्वारा वादा और अनुबंध के द्वारा अनुबंध करना है। मैं गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह इस गिरजे का नेतृत्व करते हैं। जैसे आप शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन और उद्धारकर्ता के समान बच्चों से प्रेम करते हैं, आपको व्यक्तिगत प्रकटीकरण प्राप्त हो सकता है जो कि आपको रचना और साहस का लक्ष्य करने में सहायक देगा पाप प्रतिरोधी बच्चों को। मेरी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे भी नेफी के शब्द गुजाएंगे, क्या तुम भी मुझे ऐसा करना दोगे कि पाप को देखते ही मैं कांप जाऊं। मैं गवाही देती हूँ कि हमारे उद्धारकर्ता ने संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया, क्योंकि उसने कहा कि वह करेगा और कि वह हमसे नश्वरता में हमारी समझ से परे और अधिक प्यार करता है, क्योंकि उसने कहा वह करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My purpose is to invite others to come unto Christ.
मेरा उद्देश्य दूसरों को मसीह के पास आने का निमंत्रण देना है। यह आपका भी उद्देश्य है। हम इस उद्देश्य को यीशु मसीह की ओर देखने के द्वारा पूरा कर सकते हैं। जब मैं 16 साल का था, मैंने अपने माता पिता के साथ बपतिस्मा लिया था। मेरा छोटा भाई क्विंग होन, जो 14 साल का था, मेरे चाचा यंग जिंग ली के द्वारा गिरजे से जुड़ा था और हमें उसके गिरजे में निमंत्रण दिया था। हमारे परिवार के 10 सदस्य में से एक हर एक भिन्न गिरजे से संबंध रखता था। इसके लिए हम सच्चे गिरजे को पाकर खुश थे और अपने बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह के सुचमार में मिली खुशी को हमने बांटना चाहते थे। मेरे पिता सच्चाई को सिखाने और बांटने के लिए हमारे बीच एक सबसे अधिक उत्साहित थे। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे। काम के बाद लगभग हर दिन वह प्रचारकों के साथ हमारे परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से मिलने जाते थे। 7 महीने के बाद हमने बपतिस्मा लिया। 23 लोग मेरे परिवार और रिश्तेदार गिरजे के सदस्य बने थे। इसके बाद अगले साल मेरे पिता का सदस्य प्रचारक कार्य द्वारा 130 लोगों के बपतिस्मे का चमत्कार हुआ था। उनके लिए परिवार इतिहास की भी महत्वपूर्ण था और उन्होंने हमारे पूर्वजों की 8वीं पीढ़ियों के कार्य को पूरा किया था। उस समय से लेकर मेरे 14 साल के भाई द्वारा आरंभ किए गए हमारे परिवार के परिवर्तन के प्रतिफल अनगिनत तरीकों से बड़े हैं, न केवल जीवितों के लिए लेकिन मृतकों के लिए भी। मेरे पिता और दूसरों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे परिवार वृक्ष 32 पीढ़ियों तक फैल गया है और जब हम कई शाखाओं के लिए मंदिर कार्य को पूरा कर रहे हैं। आज मुझे अपने पूर्वजों और अपने वंशों से जुड़ने में रोमांच और महान आनंद महसूस होता है। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने कोलंबस ओहायो मंदिर में इसी प्रकार के अनुभव को लिखा था। जब मैं मंदिर में बैठा हुआ था, अपने परदादा, दादा और पिता के जीवनों पर विचार कर रहा था, मैंने नीचे मेरी बेटी और उसकी बेटी की ओर और उनके बच्चों की ओर, अपने नाती पोते और की देखा। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मैंने इन 7 पीढ़ियों के बीच खड़ा हूँ, 3 मुझ से पहले और 3 मेरे बाद। उस पवित्र और पावन घर में मेरे मन में जबरदस्त दायित्व का भाव आया कि जो मुझे अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला था और मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का। हम सभी अनंत परिवार के मध्य में हैं। हमारी भूमिका एक ऐसा मोड़ हो सकती है जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अध्यक्ष हिंकली ने आगे कहा, अपनी पीढ़ियों की जंजीर में स्वयं की को कभी भी एक कमजोर कड़ी न बनने दे। सुसमाचार में सब आपकी विश्वसनीयता आपके परिवार को मजबूती देती है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने अनंत परिवार में मजबूत कड़ी होंगे? एक दिन मेरे बपतिस्मे के कुछ महीने बाद मैंने गिरजे के कुछ सदस्यों को एक दूसरे की आलोचना करते सुना। मैं बहुत निराश हुआ। मैं घर गया और अपने पिता से कहा कि मैं शायद कभी गिरजा नहीं जाऊंगा। सदस्यों को एक दूसरे की इस तरह आलोचना करते हुए देखना मुश्किल था। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सुसमाचार को पुनर्स्थापित किया गया था और यह परिपूर्ण है, लेकिन सदस्य अभी परिपूर्ण नहीं है, ना ही वह स्वयं और ना ही मैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अपने आसपास के लोगों के कारण अपने विश्वास को मत छोड़ना, बल्कि यीशु मसीह के साथ अपने संबंध मजबूत करो। आसपास मत देखो और ऊपर देखो, ऊपर यीशु मसीह की ओर देखो। मेरे पिता की विद्वान सलाह मेरे विश्वास को मजबूत करती है। जब कभी मैंने जीवन में चुनौतियों का सामना करता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे मसीह की शिक्षाओं को लागू करना है। जब हम उनको शब्दों से पहले पढ़ते, प्रत्येक विचारों में मेरी ओर देखें, संदेह मत करो, भयभीत मत हो। जब मैं वाशिंगटन सियास्टल मिशन की अध्यक्षता कर रहा था, उस सालों में के कई दिनों तक बारिश हुई थी, फिर भी हमारे प्रचारकों को बारिश के में बाहर निकालने और प्रचारक कार्य करने का निर्देश था। मैंने उनसे कहा था, बारिश में बाहर निकलो, स्वर्ग की ओर देखो, अपनी मुंह खोलो और इसे पी लो। जब ऊपर देखते हो तो आपको बिना किसी भय के प्रत्येक से सामने मुंह खोलने की शक्ति मिलेगी। उन्हें ऊपर देखने के लिए यहाँ तक कि एक प्रतीकात्मक सबक था। जब मैं अपने मिशन के बाद भी चुनौतियों का सामना करते हैं, कृपया प्रदूषित स्थानों में ऐसी कोशिश ना करें। सेलेस्टियल मिशन में सेवा करते हुए ही मेरे पास अपने सबसे बड़े बेटे सनबिम का फोन आया, जो कि पियानो वादक है। उसने कहा, उसके न्यूयॉर्क के क्रॉसनिकल हॉल में पियानो बजाने का मौका मिला है, क्योंकि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। हम उसे के लिए बहुत खुश हुए और रोमांचित हुए थे। हालांकि उस शाम धन्यवादी प्रार्थना करने के दौरान मेरी पत्नी को पता चला कि हम उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, और उसने स्वर्गीय पिता की और कुछ इस प्रकार कहा, स्वर्गीय पिता, मैं इस आशीष के लिए आभारी हूँ जो आपने सनबीम को दी है मुझे, लेकिन मुझे खेद है कि मैं वहाँ जा नहीं सकती। मैं आवश्यक जाती यदि आपने यह आशीष इस मिशन से पहले या इसके बाद दी होती। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा दुख है। जैसे ही उसने इस प्रार्थना को समाप्त किया, उसने एक स्पष्ट वाणी सुनी, क्योंकि तुम जा नहीं सकती, इसलिए तुम्हारा बेटे को यह मौका दिया गया है। क्या तुम सौदा करना चाहोगी? मेरी पत्नी को आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि प्रभु के राज्य में माता पिता के विश्वास पूर्ण कार्य के कारण बच्चों को आशीष मिलेगी, लेकिन पहली बार उसने अपनी भूमिका को इतनी स्पष्ट रूप से समझा था। उसने तुरंत उसे जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे लिए जाना ठीक नहीं है, उसे इस सम्मान को देना लेने दो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए स्वर्गीय पिता के प्रेम को पहचानना सरल नहीं होता है जब हम चारों ओर अपनी सांसारिक आंखों से देखते हैं, क्योंकि हमें असुविधा, नुकसान, भोज या अकेलापन पहले दिखाई देता है। दूसरी ओर हम इसके पार आशीषों को देखते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं, प्रभु ने बताया है, जब हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं, यह उस आज्ञा का पालन करने से मिलती है जिसके साथ यह जुड़ी हुई है। वह सब जो परमेश्वर की सेवा में शामिल होते हैं, समझे कि आप अपने से पहले और अपने बाद की पीढ़ियों के बीच प्रभावशाली आशीषों की मजबूत कड़ी हैं। आज मैं देखकर खुश होता हूं कि हमारे परिवार के बहुत से सदस्य अनुबंध के मार्ग पर हैं, और पर हमारे सामने खाली सीटों की कल्पना से दुखी होता हूं। एल्डर एम रसल बालर्ड ने कहा है, यदि आप अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के पुनस्थापित गिरजे में नहीं आने या छोड़ने का चुनाव करते हैं, तो आप कहां जाएंगे, आप क्या करेंगे? गिरजे के सदस्यों से और प्रभु चुने हुए मार्गदर्शनों के साथ बिल्कुल नहीं रहने के निर्णय का दूरगामी प्रभाव होगा, जिसे अभी नहीं देखा जा सकता। अध्यक्ष थॉमस मानसन हमें उत्साहित करते हैं, आशा है हम आसान गलत के स्थान पर हमेशा कठिन सही को चुनेंगे। ऊपर यीशु मसीह की ओर देखने का अभी भी समय है, उसकी बाहें हमेशा आपके लिए फैली हुई हैं। हम से पहले और हमारे बाद ऐसी पीढ़ियां हैं जो मसीह का अनुसरण करने के लिए हम पर निर्भर, ताकि हम परमेश्वर का अनंत परिवार बन सके। जब मैं श्रेष्ठ अध्यक्ष की अपनी युक्ति में मुक्त हुआ, तो मेरे बेटे मेरे साथ अधिक समय बिताने के बारे में उत्साहित थे। 3 हफ्ते बाद मुझे स्तर के रूप में नियुक्त किया गया। पहले मैंने सोचा शायद वे निराश होंगे, लेकिन मेरे सबसे छोटे बेटे का उत्तर विनम्र था, डैडी चिंता मत करो, हम एक अनंत परिवार हैं। कितना सरल स्पष्ट उत्तर था। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि क्योंकि मैंने केवल इस संसारिक जीवन को देखा था, लेकिन मेरा बेटा खुश था क्योंकि उसने आसपास नहीं देखा था बल्कि अनंत और प्रभु के उद्देश्य की आंखों में देखा था। हमेशा ऊपर देखना आसान नहीं होता है जब हमारे माता पिता सुसमाचार का विरोध करते हैं, जब आप गिरजे की छोटे समूह के सदस्य होते हैं, जब आपके पति या पत्नी सदस्य नहीं हैं, जब आप एक एकल माता या पिता होते हैं, जब आप शारीरिक से या मानसिक रूप से विकलांग हैं, या जब आप अपनी आप किसी विपत्ति के शिकार हैं, यदि उन कठिन समस्याओं के सामने विश्वास में अटल रहें, शक्ति संतुलन और चंगाई के लिए ऊपर देखेंगे यीशु मसीह के प्रायश्चित की शक्ति के द्वारा, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई के लिए होंगी। मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूं कि वह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। जब हम अपने जीवित भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन का अनुसरण करते हैं तो हम ऊपर यीशु मसीह की ओर देखते हैं। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना और धर्मशास्त्र अध्ययन करते हैं, प्रत्येक हफ्ते निष्ठा से प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम उसकी ओर ऊपर देखने के लिए शक्ति पाते हैं। मैं इस गिरजे का और अनंत परिवार सदस्य होने का से खुश हूँ। मुझे इस महान सुसमाचार को दूसरों में बांटने में अच्छा लगता है। दूसरों को मसीह के पास आने का निमंत्रण देना का हमारा उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को यीशु मसीह की ऊपर देखकर पूरा कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में इन बातों की विनम्रता से गवाही देता हूँ, आमीन।
थैंक यू एल्डर चे।
हेलो, आपका धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैं आप सब की तरह पहचानता हूं कि ईश्वर हम प्रभु के काम को अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन और उनके संदेश द्वारा तेजी से होते हुए देख रहे हैं। अध्यक्ष मॉन्सन, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय भविष्यवक्ता, हमने इस सप्ताह के अंत पवित्र आत्मा का बहाव अनुभव किया है। चाहे आप इस बहुत बड़े कक्ष में हों या अपने घरों से देख रहे हों या संसार की दूर की भागों के सभाघरों में एकत्रित हुए हों, मेरा संदेश आज हमारे जीवन पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता पर केंद्रित है। हमारे स्वर्गीय पिता ये जानते थे कि नश्वरता में हम चुनौतियां आपत्ति अशांति का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें पता था कि हम अंतिम दिन के प्रकटीकरण से हम जानते हैं कि परमेश्वरत्व में तीन अलग अलग प्राणी शामिल हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, उनका इकलौता पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हम जानते हैं कि पिता के पास हाड़ मांस और हड्डियों का शरीर है जो मनुष्य की तरह ही अस्पृश्यनीय है, पुत्र का भी। परंतु पवित्र आत्मा का हाड़ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, किंतु वो एक आत्मा का पात्र है। यदि ऐसा नहीं होता, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करती। मेरा संदेश आज हमारे जीवन पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता पर केंद्रित है। हमारे स्वर्गीय पिता ये जानते थे कि नश्वरता में हम चुनौतियों आपत्ति अशांति का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पता था कि हम प्रश्नों, निराशा, प्रलोभन और कमजोरियों से लड़ेंगे। हमें नश्वर शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा प्रदान किया, जिसका दूसरा नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु से बांधे रखता है, ईश्वरीय कार्य के द्वारा वो प्रेरित करता है, गवाही देता है, पढ़ाता है और प्रभु की ज्योति में चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारा पवित्र उत्तरदायित्व उसके प्रभाव को अपने जीवन में पहचानने और उत्तर देने का है। प्रभु का वादा याद रखें, मैं अपने आत्मा तुमको प्रदान करूंगा जो हमारी बुद्धि को उजागर करेगा, जो तुम्हारी आत्मा को आनंद से भर देगा। मुझे इस आश्वासन से प्रेम है, आनंद जो हमारी आत्माओं को भर देता है, एक अनंत परपक्ष के साथ जो प्रतिदिन जीने की विपरीत है। वो आनंद शांति के रूप में कठिनाइयों और मनोव्यथा के बीच आता है। वो हमें आराम और साहस प्रदान करता है, सुसमाचार की सच्चाइयों का खुलासा करता है और हमारा प्रेम प्रभु और परमेश्वर के बच्चों के लिए विस्तारित करता है। हालांकि ऐसी आशीषों की आवश्यकता बहुत अधिक है, कई तरीकों से संसार इसे भूल और त्याग चुका है। प्रत्येक सप्ताह जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, हम वादा करते हैं उनको हमेशा याद रखने का, प्रभु यीशु मसीह को और उनके बलिदान को। इन पवित्र वचा का पालन करने से ये वादा दिया गया है कि हमारे साथ उनकी पवित्र आत्मा हमेशा रहेगी। हम इस प्रकार कैसे करें? पहला, हम पवित्र आत्मा के योग्य रहने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रहती है जो प्रभु उनके परमेश्वर को दिन प्रतिदिन याद रखने में खड़े हैं। जैसे कि प्रभु ने सलाह दी, हमें संसार की वस्तुओं को दूर रखना चाहिए और अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा अपवित्र मंदिरों में नहीं बसती। हमें हमेशा परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और विश्वास का 13वां अनुच्छेद सच्चाई से जीना चाहिए। ईमानदार, सच्चा, शुद्ध, उदार, धार्मिक और पवित्र होना और सब मनुष्यों के प्रति सच्चाई करें। दूसरा, हमें पवित्र आत्मा का ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हारे मन और दिमाग में कहूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम पर आएगी और जो तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। मैं इसको समझने लगा जब मैं स्कॉच प्लेन्स न्यू जर्सी में एक युवा प्रचारक था। जुलाई की एक गर्म सुबह मेरे साथी और मुझे ये प्रेरणा मिली कि एक मंदिर स्क्वायर के नाम को ढूंढा जाए। हमें एलवुड स्क्वायर के दरवाजे को खटखटाया। मिसेस शेफर ने हमें नम्रता से लौटा दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करना शुरू किया, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जो मैंने पहले कभी नहीं किया और जो मैंने तब से अब तक नहीं किया। मैंने दरवाजे पर अपना पैर अटका दिया और पूछा, क्या कोई और हमारा संदेश सुनने में दिलचस्पी लेना चाहेगा? उनकी 16 वर्ष की बेटी मारती को दिलचस्पी थी और उसने उत्साह से एक दिन पहले मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। मार्ती ने हमसे भेंट की और समय रहते उसकी माँ ने भी हमारी चर्चाओं में भाग लिया। वे दोनों गिरजाघर से जुड़े। मार्ती के बपतिस्मे के परिणाम स्वरूप 136 लोग, जिनमें परिवार के कई थे, बपतिस्मा ले और सुसमाचार की वाचाएं ली। मैं कितना आभारी था कि मैंने पवित्र आत्मा की सुनी और अपना पैर जुलाई की गर्मी के उस दिन फंसाया। मार्ती और उनके परिवार के कई सदस्य आज यहाँ शामिल हैं। तीसरा, हमें पवित्र आत्मा को पहचानना चाहिए जब वो आती है। मेरा अनुभव ये रहा है कि पवित्र आत्मा अक्सर भावना के रूप में बात करती है। आप उसे उन शब्दों में महसूस करते हैं जिनसे आप परिचित हैं, जो आपको समझ आते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। गौर करें, नफाइटियों के उत्तर की प्रतिक्रिया पर जब उन्होंने प्रभु को उनके लिए प्रार्थना करते हुए सुना, उन्होंने अपने मन में उनकी प्रार्थना के शब्दों को महसूस किया। पवित्र आत्मा की आवाज शांत और धीमी होती है। पुराने नियम में एलाइजा बाल के पुरोहित के साथ तर्क करता है। पुरोहित अपेक्षा करते हैं कि बाल की आवाज गरजते हुए आए और उनके बलिदान में अग्नि से प्रज्वलित करें, परंतु वहां कोई आवाज नहीं थी और ना ही कोई आग। एक दूसरे अवसर पर एलाइजा ने प्रार्थना की और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। क्या आप उस आवाज को जानते हैं? अध्यक्ष मॉनसन ने सिखाया, जैसे कि हम इस जीवन की यात्रा का अनुसरण करते हैं, आइए हम पवित्र आत्मा की भाषा को सीखें। पवित्र आत्मा उन वचनों को बोलती है जो हम महसूस करते हैं। ये भावनाएं कोमल होती हैं, कार्य करने के लिए, ठहकोने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, एक निश्चित तरीके से उत्तर देने जैसी होती है। यदि हम अपनी आराधना में लापरवाह या असावधान हैं, संसार के कार्यों से खींचे चले जाते हैं या थके और निराश हो गए हैं, हम अपनी महसूस करने की क्षमता में कमी पाते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में नफी ने लमन और लेमुअल से कहा, तुमने समय समय पर उसकी वाणी को सुना और तुमने तुमसे धीमी स्वर आवाज में बातें की है, लेकिन तुम इतने संवेदनशील हो गए थे कि तुम उसके शब्दों को न सुन सके। पिछले जून में एक नियत कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गया। हम 10 दिन के बड़े कार्यक्रम पर कोलंबिया, पेरू और इक्वेडोर की यात्रा कर रहे थे। एक विशाल भूकंप ने सैकड़ों को मार डाला, दसियों हजारों को घायल कर दिया था। इक्वेडोरियन के पोर्तुवेजो और मंटा शहरों के घरों और समुदायों को क्षतिग्रस्त और तबाह कर दिया था। मुझे प्रेरित किया गया अपने कार्य में उन सदस्यों से भेंट करने के लिए जो उन शहरों में रहते थे। सड़कों की क्षति पहुंचने के कारण हम निश्चित नहीं थे कि हम वहां पहुंच पाएंगे। वास्तव में हमें बताया गया था कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, परंतु वो प्रेरणा नहीं जा रही थी। फलस्वरूप हम आशीषित हुए और हम दोनों शहरों की यात्रा कर सके। इतनी कम सूचना के साथ मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ पौरोहित अध्यक्षों की जल्दी में संगठित आयोजनों में भाग लेने की, किंतु हम प्रत्येक स्टेक सेंटर पर पहुंचे ये पाने के लिए कि गिरजाघर मंच तक भरे हुए थे। कुछ उस क्षेत्र के दिग्गज थे, प्रथम अन्वेषक जिन्होंने गिरजा को स्थिरता पूर्वक पकड़ रखा था, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए अपने साथ आराधना में भाग लेने के लिए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए। सामने की पहली पंक्तियों पर वो सदस्य बैठे थे जिन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों और पड़ोसियों को खो दिया था। मुझे प्रेरित आशीष उन सब को देने की अगुवाई हुई जो वो उपस्थित थे। मेरी सबसे पहली प्रेरित आशीष, हालांकि मैं कमरे में सबसे पहले खड़ा था, ऐसा लगा मेरे हाथ उनमें से हर एक के सिर पर थे और मुझे प्रभु के वचनों का उमड़ना महसूस हुआ। ये वहां खत्म नहीं हुआ, मुझे प्रेरणा मिली उनसे बात करने की, वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने किया जब उन्होंने अमेरिका के लोगों से भेंट की थी। उन्होंने उनके छोटे बच्चों को लिया और आशीष दी और उनके लिए पिता से प्रार्थना की। हम इक्वेडोर में थे, हम अपने पिता के व्यवसाय पर थे और ये उनके बच्चे थे। चौथा, हमें पहली अगुवाई पर कार्य करना चाहिए। नफी के वचनों को याद रखो, और मुझे पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन दिखलाया गया पहले से न जानते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं आगे बढ़ा और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने अपने पहले संकेतों पर विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हम तर्क संगत होते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि क्या हमें आत्मिक प्रभाव महसूस हो रहा है या ये केवल हमारे विचार हैं। जब हम दूसरा अनुमान लगाना शुरू करते हैं और तीसरा अनुमान भी अपनी भावनाओं का, और हम सबने ये किया है, तब हम पवित्र आत्मा को खारिज करते हैं। हम दिव्य सलाह पर प्रश्न उठाते हैं। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा, यदि तुम पहली प्रेरणा को सुनो, तुम्हें 10 में से 9 बार वो सही मिलेगी। अब एक चेतावनी, आतिशबाजी की उम्मीद ना रखें क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को प्रत्युत्तर दिया। याद रखें, आप शांत और धीमी आवाज के कार्य में लगे हैं। न्यूयॉर्क शहर के मिशन के अध्यक्ष की सेवा करने के दौरान मैं हमारे कुछ प्रचारकों के साथ ब्रॉक्स के एक भोजनालय में गया। एक युवा परिवार हमारे पास आकर बैठ गया, वो सुसमाचार के लिए स्वर्ण प्रतीत हुए। मैंने अपने प्रचारकों को निरंतर मुझसे भेंट करते देखा, फिर देखा वो परिवार ने अपना खाना खत्म किया, उस दरवाजे से बाहर की ओर निकल गए। मैंने फिर कहा, एल्डर्स, आज यहाँ पर एक सीख है, आपने एक अच्छे से परिवार को इस भोजनालय में आते देखा, हमें क्या करना चाहिए था। उनमें से एक एल्डर जल्द ही बोला, मैंने उठने और उनसे बात करने के बारे में सोचा था, मुझे इशारा मिला परंतु मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एल्डर्स, मैंने कहा हमें हमेशा अपनी पहली प्रेरणा पर कार्य करना चाहिए। वो इशारा जिसे आपने महसूस किया, यही पवित्र आत्मा है। पहला संकेत स्वर्ग से पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। जब हमें वो पुष्टि और गवाही देता है, हमें उन्हें पहचानना चाहिए और उसके लिए जो वे जो हैं और कभी भी हमारे सामने से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। कई बार ये पवित्र आत्मा होती है जो हमें प्रेरणा देती है कि किसी जरूरतमंद के पास पहुंचने की, विशेष रूप से परिवार और मित्र। इस प्रकार वो शांत और धीमी आवाज सभी वस्तुओं के माध्यम से फुसफुसाती है और प्रवेश करती है। सुसमाचार पढ़ाने के सभी अवसरों की ओर संकेत करती है, पुनर्स्थापना और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए और अपना चिंतन और समर्थन देने के लिए और परमेश्वर के अनमोल बच्चों में से एक को बचाने के लिए। इसको इस प्रकार कहला ये जाना सोचिए, पहला उत्तरदाता। अधिकांश समुदायों में पहले उत्तरदाता किसी एक दुर्जात घटना की तबाही में या दुर्भाग्य में फायरमैन, पुलिसकर्मी या चिकित्सा सहायक होते हैं। वे रोशनी चमकाते हुए आते हैं और यहाँ मैं जोड़ सकता हूँ, हम अविश्वसनीय रूप से उनके आभारी हैं। प्रभु का रास्ता कम स्पष्ट होता है, किंतु इसे तत्काल प्रतिक्रिया की इसी प्रकार आवश्यकता है। प्रभु अपने सभी बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं और वो जानते हैं और कौन मदद करने के लिए तैयार है। यदि हम अपनी सुबह की प्रार्थना में प्रभु को बताएं कि हम तैयार हैं, वो हमें उत्तर देने के लिए बुलाएंगे। यदि हम उत्तर देते हैं, वो हमें समय समय पर फिर बुलाएंगे और हम उस पर अपने आप को पाएंगे कि जैसे कि थॉमस स्मॉन्सन कहते हैं, प्रभु का दूत कर। हम ऊपर से मदद लाने के लिए आत्मिक उत्तरदाता होंगे। यदि हम उन संकेतों पर ध्यान दें जो हमारे पास आते हैं, हम प्रकटीकरण की आत्मा में बढ़ेंगे और अधिक से अधिक पवित्र आत्मा संचालित सक्षम दृष्टि प्राप्त करेंगे। प्रभु ने कहा है, उस पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो जो अच्छाई करने के लिए नेतृत्व करती है। ये संभव हो कि प्रभु के आदेश की अच्छे आनंद में बने रहें, क्योंकि मैं तुम्हारा निर्देशन बराबर से करूंगा। वो हमें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित करते हैं। ये संभव हो कि हम पवित्र आत्मा के नजदीक रहें, अपने पहले संकेतों पर जल्द से जल्द अभिनय करते हुए, जानते हुए कि ये परमेश्वर की ओर से है। मैं साक्षी देता हूँ कि पवित्र आत्मा की शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी रक्षा करती है और हमारे साथ रहती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
कलीसिया और गायक मंडली अब साथ मिलकर कम ये चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड गाएंगी। गीत गाने के बाद हम एल्डर एल विटनी क्लेटन 70 के अध्यक्षता से को सुनेंगे। उनके पश्चात एल्डर डैलन एच ओक्स 12 प्रेरितों के परिषद से होंगे। उनकी टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी Dearest children, God is near you.
This is the 187th. ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां वार्षिक महासम्मेलन है। Thank you.
The Savior performed his first recorded miracle at a wedding feast in Cana of Galilee.
उद्धारकर्ता ने उल्लेख किया गया चमत्कार गलीन के कानन में शादी के पर्व पर किया था। यीशु, मरियम, उसकी माता और उसके शिष्य वहाँ थे। मरियम ने पर्व पर सफलता की कुछ जिम्मेदारी को एहसास किया। जश्न के दौरान एक समस्या उभरी। शादी मेजबान का दाख मधु खत्म होने लगा था। मरियम चिंतन हुई और यीशु के पास गई। वह संक्षिप्त में बोली। फिर मरियम सेवकों की ओर मुड़ी और कहा, रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्हें भर दिया। उसने उनसे कहा, जब निकाल कर भोज के प्रधान के पास जाओ। वह ले गए। फिर भोज के प्रधान ने वह पानी चखा और दाखरक बन गया था, और अचंभा का भाव देते हुए कि तुमने अच्छा दाखरक अब तक रख छोड़ा था। हम अक्सर इस घटना को याद करते हैं, क्योंकि पानी को दाखरक में परिवर्तित करना परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शन था, एक चमत्कार। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, लेकिन यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण लेख यूहन्ना में है। मरियम एक मूल्यवान और चुनी हुई पात्र, परमेश्वर द्वारा जन्म देने, पालन पोषण करने और परमेश्वर के पुत्र को प्रवेश के लिए बुलाई गई। वह उसके बारे में धरती पर दूसरों से अधिक जानती थी। वह उसके चमत्कारी जन्म की सच्चाई को जानती थी। वह जानती थी कि वह पाप रहित था, और वह अन्य पुरुषों के समान नहीं बोलता था, ना ही उसे सिखाया गया था। उसके लिए जरूरी नहीं था कि किसी को उसे शिक्षा देनी चाहिए। मरियम उसकी समस्या के समाधान करने की असाधारण योग्यता को जानती थी। शामिल है यह व्यक्तिगत रूप से शादी के पर्व पर दाखरक प्रदान करने का, उसकी माता के रूप में उस पर और उसकी पवित्र समर्थ पर अचल भरोसा बना हुआ था। उसका साधारण सरल तरीके से सेवकों को निर्देश देने में ना चेतावनी, ना योग्यता, ना बाधाएं थी। जो कुछ वह तुमसे कहता है उसे करो। मरियम एक युवती थी जब स्वर्ग दूत जिब्राइल उसको प्रकट हुआ था। पहले वह घबरा गई उसके द्वारा जिस पर अनुग्रह हुआ, और स्त्रियों में आशीषित हुई, और वह सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। जिब्राइल ने उसे आश्वासन दिया कि वह भयभूत ना हो। वह अच्छा समाचार लाया था। वह गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। मरियम जोर से आश्चर्यचकित हुई। यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत समझता है, लेकिन संक्षिप्त में उसकी पुष्टि करता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम विनम्रता से उत्तर देती है कि वह करेगी जो कुछ परमेश्वर ने कहा है। बिना विशेष जानने की मांग करें और बिना शंका करें, अनगिनत प्रश्नों का उसके जीवन के लिए लागू करने के बावजूद मरियम ने अपने आप को वचनबद्ध किया। बिना वास्तविकता को समझे क्यों वह उससे पूछ रहा था या चीजें कैसे होंगी, वह परमेश्वर में साधारण सा भरोसा करती है। मरियम परमेश्वर के वचन को बिना शर्त के स्वीकार करती है, और बिना संपूर्ण ज्ञान के कि आगे क्या रखा है, साधारण भरोसे के साथ मरियम कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब हम निर्णय लेते हैं करने का जो कुछ परमेश्वर हमसे करने को कहता है, ईमानदारी से हम हमारे प्रतिदिन के व्यवहार को परमेश्वर की इच्छा के साथ करते हैं। कुछ साधारण विश्वास के काम, जैसे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, उपवास, और हमारी बुलाहट को आत्मिकता की गहराई से करने की नश्वरता की मांगों से मिलकर क्षमता को अच्छे से बढ़ाते हैं। अक्सर साधारण आदतों का भरोसा चमत्कारी परिणाम की ओर ले जाता है। वह हमारे विश्वास को एक बीज के भीतर से परिवर्तित करता है, हमारे जीवन में अद्भुत शक्ति से अच्छा करता है। फिर जब चुनौतियां हमारे रास्ते में आती हैं, वो मसीह में जड़ पकड़कर हमारी आत्मा में अटलता प्रदान करता है। परमेश्वर हमारे कमजोरियां, हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है, और हमारी अच्छाई को सारी चीजों के एक साथ काम करने का कारण होता है। कुछ सालों पहले मैंने एक युवा बिशप से बात की जो हर सप्ताह घंटों अपने वार्ड के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा देने में बिताता रहता था। वह विचित्र तरह से ध्यान रखता था, समस्याएं उसके वार्ड के सदस्य सामना करते थे। वह कहता है कि उन सब गिरजे के सदस्यों को हर जगह सामना करना पड़ता है, कारणों को, जैसे कि कैसे खुशहाल विवाहित स्थापित किया जाए, कामों के साथ संतुलन करने में संघर्ष करना, परिवार और गिरजा के कर्तव्य, ज्ञान के शब्दों का पालन करने से साथ चुनौतियां, व्यस्क या अशीलता या गिरजे की पॉलिस से शांति पाना या ऐतिहासिक प्रश्न जिन्हें समझ नहीं पाते। उसके वार्ड सदस्यों को अक्सर दी गई सलाह में शामिल था साधारण विश्वास का अभ्यास करना, जैसे मार्मन की पुस्तक का रोज अध्ययन करना, दशमांश देना और गिरजा में समर्पण से सेवा करना। अक्सर उसके उनके एक जवाब का संदेह होता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ बिशप, हम सब जानते हैं यह सब बातें करना है कि अच्छी है, हम गिरजा में हर समय यह बिताते बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे समझ पाए हैं। इन सब बातों को करने से मेरी परेशानी, जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, से कोई लेना देना नहीं है। यह एक निष्पक्ष प्रश्न है। अक्सर मैं ध्यान देता हूँ कि वह लोग जो सूक्ष्म और साधारण बातों को विचार कर सकते हैं, सूक्ष्म तरीकों से पालन करते दिखते हैं, जो को विश्वास और समर्थ से आशीषित है, जो अपने आप को आज्ञाकारित की क्रिया के वास्तविक से बहुत दूर होते हैं और असल में उनसे पूर्णता से कुछ भी जुड़ा नहीं होता। यह दैनिक मूल की आज्ञाकारिता की क्रिया और बड़ी जटिल समस्या के उपाय को बीच से जोड़ा होना कठिन प्रतीत लग सकता है। हम सामना कर रहे हैं, लेकिन यह जुड़े हुए हैं। मेरे अनुभव में रोज थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें हैं या विश्वास सही विश्वासी है, यही एक अच्छा सरल तरीका है अपने आप को जीवन की परेशानी के विरुद्ध मजबूत करने का। जो कुछ भी हो, विश्वास का छोटा सा काम, यहाँ तक कि वह महत्वपूर्ण ही क्यों ना लगे, जो कुछ भी हम करते हैं, हम आशीष देते हैं। नामान पर विचार करें। वह आराम एक नामान सेनापति था और एक प्रतिष्ठित पुरुष। एक कोड़ी था, एक लड़की ने इसराइल में एक भविष्यवक्ता के बारे में बताया जो नामान को चंगा कर सकता है, और तो वह सेवकों का एक दल सैनिक इसराइलियों के लिए उपहार लेकर यात्रा की आखिरकारा के एलिशा के घर पहुंचा। एलिशा के सेवक, खुद एलिशा नहीं, ने नामान को जानकारी दी कि प्रभु ने सरल सी आज्ञा दी थी, तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, शायद यह सरल सा नुस्खा प्रतिष्ठित योद्धा को लगता है जैसे न्याय विरुद्ध साधारण या उसकी प्रतिष्ठा से नीचे। इस वह सुझाव अपमानजनक लगा था, और कम से कम अलीशा का निर्देश देना नामान पर कोई असर नहीं पड़ा था, तो वह मोड़ा और तेज में चला गया। परंतु नामान के सेवक ने नम्रता से उसे निवेदन किया और देखा कि उसने किया कुछ महान काम। यदि अलीशा उससे पूछेगा, उसने ध्यान दिया कि उससे सिर्फ छोटा सा काम करने के लिए कहा गया था, क्या वह ये नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह समझ ना पाए क्यों। नामान ने दोबारा से अपनी प्रतिक्रिया पर सोचा और शायद हो, लेकिन आज्ञाकारी होकर चला गया नीचे और 7 बार यर्दन में डुबकी मारी और चमत्कारी तरीके से चंगा हुआ। आज्ञाकारिता के कुछ पुरस्कार शीघ्र आ जाते हैं, अन्य सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के बाद मिलते हैं। अनमोल मोती में हम पढ़ते हैं, आदम का ना थकने वाला आज्ञा का पालन कर बलिदान करने वाला था। जब स्वर्गदूत पूछता है यह वह बलिदान क्यों कर रहा, वह कहता है मैं नहीं जानता, प्रभु मेरे बचाने वाले ने मुझे आज्ञा दी थी। स्वर्गदूत ने समझाया कि उसका बलिदान पिता के एक लौते पुत्र के समान है, परंतु वह स्पष्टता सिर्फ जाहिर करता था कि आदम लंबे समय से प्रभु के लिए बहुत दिनों से बिना जाने करता आया था। उसके वचन पालन करने को दर्शाते हैं क्यों उसे ऐसी भेंट का बलिदान करना था। परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देगा, हमें उसके सुसमाचार के, हमारे अटल आज्ञाकारिता और उसके गिरजा की ईमानदारी के लिए, परंतु वह कभी कभी हमें उसका समय सूची अग्रिमता में दिखाता है। वह कभी हमें आगे के बारे में पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। वहां पर जहां आशीष, आशा और प्रभु में भरोसा आता है, परमेश्वर हमसे उसके साथ सहने, उस पर भरोसा और उसका अनुसरण करने को कहता है। वह हमसे आग्रह करता है, मतभेद मत करो क्योंकि तुमने नहीं देखा है। वह हमें सावधान करता है कि हमें आसान जवाब की चाह नहीं रखनी चाहिए या स्वर्ग से तुरंत समाधान की। समाधान होगा जब हम समस्याओं में अपने विश्वास पर दृढ़ता से खड़े रहेंगे। यदि कठिन है कि परीक्षा अंत तक रहे या जवाब धीरे से आता है। मैं अंधी आज्ञाकारिता के बारे में नहीं, परंतु विचार भरे भरोसे में और प्रभु के संपूर्ण प्रेम और समय पर बोल रहा हूँ। हमारे विश्वास की परीक्षा में हमेशा शामिल होगा। सरलता में सच्चाई से बने रहो। प्रतिदिन विश्वास का अभ्यास करते हैं, तब और सिर्फ तब उसने वादा किया कि हमें पवित्र जवाब प्राप्त होगा। हम उसके लिए तरसते रहेंगे। परेशानी से आराम, अंत तक समर्थ, एक प्रश्न का जवाब, अंत दृष्टि, ज्ञान समाधान है। सिर्फ एक बार हमें अपनी इच्छा से साबित करना है वह जो कुछ हमसे करने को कहे बिना मांगे, तब क्यों कैसे करना है। और हम तुम अपने विश्वास, अपनी निष्ठा और धैर्य और लंबे समय तक के उत्पीड़न का पुरस्कार पाओगे। जानबूझकर ये अन्यथा हम सभी चुनते हैं। हम इस किसकी सेवा करेंगे प्रतिदिन 12। हम हमारा संकल्प प्रभु की सेवा व्यवस्थित रूप से विश्वास होकर रोज के कार्यों में समर्पित होकर दर्शाते हैं। प्रभु हमारे मार्ग का नेतृत्व करने बात करता है, परंतु उसके लिए वह करना होगा। हमें चलना भरोसा करके कि वह मार्ग जानता है, क्योंकि वह ही मार्ग है। हमें अपने पानी के बर्तन को ऊपर तक भरना है। जब हम उस पर भरोसा कर अनुसरण करते हैं, जैसे पानी से दाख मधु, हमारा जीवन बदल जाता है। हम कुछ अधिक बन जाते हैं जितने हम होते हैं, अन्यथा हम बन सकते हैं। प्रभु में भरोसा करो और जो कुछ वह तुमसे कहता है उसे करो। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
हमारा पहला विश्वास घोषित करता है, हमारा अनंत पिता परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। हम सारी मसीहत से लगभग जुड़े हैं और इस भरोसे में पिता और पुत्र और एक पवित्र आत्मा है। परंतु हम क्या विश्वास करते हैं उनके बारे में दूसरों के भरोसे से भिन्न है। हम विश्वास करते हैं जो मसीहत संसार पवित्र ट्रिनिटी के सिद्धांत में कहता है। उसके प्रथम दर्शन में जोसेफ स्मिथ ने दो विभिन्न व्यक्ति, दो जनों को देखा था। स्पष्ट करता है कि तब परमेश्वर की धारा में ईश्वर तब सच नहीं है, प्रचलित था। विश्वास के विपरीति में कि परमेश्वर एक ना समझ आने वाला अनजाना रहस्य है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रकृति की सच्चाई के बारे में और उसके साथ अपने संबंध जानने वाला और हमारे पवित्र, हमारे सिद्धांत में सब बातों की कुंजी है। बाइबल लेख में यीशु की महान रक्षा की प्रार्थना है, जहां उसने बताया था कि अनंत जीवन ये है कि वे कि तुझ अद्वितीय सच परमेश्वर को और यीशु को जिसे तू ने भेजा है जाने हैं। परमेश्वर उसके काम को जानने का प्रयास नाश्वरता से पूर्ण प्रारंभ से हो गया था। यहाँ पर निष्कर्ष नहीं होगा। परिशक्ता जोसेफ स्मिथ ने सिखाया था, ये अच्छा होगा जबकि आप पर्दे के पार जाने से पहले सीखें। हमने ज्ञान पर बताया, हमें पर पूर्व आत्मा के संसार में मिला था। इस प्रकार से इसराइलियों का शिक्षा देने की कोशिश परमेश्वर की प्रकृति थी और उसका संबंध उसके बच्चों के साथ भविष्यवक्ता यशया ने कहा था, तुम ईश्वर को किस के समान बताओगे और उसकी उपमा किससे करोगे।
Or what likeness will you compare unto him?
क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने से समय से विचार नहीं किया? हम जानते हैं कि ईश्वरत्व की तीन सदस्य अलग अलग और भिन्न व्यक्ति हैं। हमें ये जोसेफ स्मिथ के द्वारा किए गए निर्देशन से जानते हैं। पिता और पुत्र के पास हार्ड मास का शरीर है, जैसे ठोस मनुष्य के रूप में, परंतु पवित्र आत्मा के पास हार्ड मास का शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा का व्यक्तित्व है। ऐसा क्या ऐसा नहीं था? पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं बसा? ईश्वर में परमेश्वर पिता का उच्चतम पद के रूप में, वैसे ही जैसे प्रत्येक आदरणीय भूमिका निभाते हैं, भविष्यवक्ता जोसेफ में समझाते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने स्वर्ग को खुला देखा हो जानता है कि वह स्वर्ग में तीन व्यक्तित्व हैं जिनके पास सामर्थ्य की कुंजी है और एक सब के ऊपर अध्यक्षता करता है। तीन व्यक्तित्व का पहला परमेश्वर सृष्टि करने वाला, दूसरा परमेश्वर मुक्तिदाता और तीसरा परमेश्वर गवाह या सहायक। ये पिता का प्रांत है कि मुखिया के रूप में अध्यक्षता करें या अध्यक्ष रहें, यीशु बिचौलिया के रूप में और पवित्र आत्मा गवाह या सहायक के रूप में। हम हमारा संबंध ईश्वर के सदस्यों के साथ उदार की योजना में क्या प्रकट किया जाता है को समझने में करते हैं। प्रश्न जैसा, हम कहां से आए, हम यहां क्यों हैं, हम कहां से कहां जाएंगे, कि जवाब उत्तर उदार की योजना, महान आनंद की योजना या मुक्ति की योजना, धर्मशास्त्र जिससे कहता है यीशु मसीह की इस योजना का सुसमाचार का केंद्र कहा जाता है। परमेश्वर के आत्मिक बच्चों के रूप में नाश्वरता के अस्तित्व पहले है। हमारा कामना हमारे अनंत जीवन की नियति है, परंतु जैसे से हम भौतिक शरीर में नाश्वरता के अनुभव के साथ के बिना उन्नति नहीं कर सकते, वह अवसर प्रदान करता है। हमारा स्वर्गीय पिता इस संसार की रचना के ऊपर अध्यक्षता करते हैं, जहां हमारी याद हमारे नाश्वर जन्म की ओर से पहले करने को वंचित करती है। हमें हमारी इच्छा उसकी आज्ञाओं का पालन और अनुभव कर नाश्वरता की अन्य चुनौतियों के द्वारा बढ़कर साबित कर सकते हैं, परंतु उस नाश्वर अनुभव के कोर्स का और हमारे पहले माता पिता के पतन के परिणाम के स्वरूप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलने के द्वारा आत्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, पाप के गंध के द्वारा और शारीरिक मृत्यु के पात्र बनकर, पिता की योजना के प्रत्यक्षी होकर और इन सब रुकावटों से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है। परमेश्वर की योजना का उद्देश्य को जानना, हम अब इस योजना के ईश्वरत्व के सदस्यों के आदरणीय भूमि पर विचारें। हमें बाइबल की शिक्षा से शुरुआत करें, उसके कुरिन्थियों के पत्र संक्षिप्त में है। प्रेरित पौलुस ने लगभग ईश्वर का पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संदर्भ दिया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके पास होती रहे। ये बाइबल धर्मशास्त्र ईश्वर का पेश और परमेश्वर के पुत्र के प्रेम का संदर्भ कर सारी परिभाषिता और प्रेरित करती है। यीशु मसीह के सेवकाई और दयालुता और पवित्र आत्मा की संगति पेश करती है। ये सब पिता परमेश्वर से प्रारंभ हुआ, जो कि जबकि हम उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं, हम उसके उच्चतम पद की निर्णायक समझदारी, हमारी उसके संबंध को और उसके उद्धार की योजना में सर्वश्रेष्ठ भूमिका, सृष्टिकर्ता और सब जो अनुसरण करते हैं को जानते हैं। जैसे एल्डर ब्रूस आर मकॉन्की लिखते हैं, उनकी मृत्यु से पूर्ण शब्द के आखिर और वास्तविक समझ देखने में बस एक ही सच जीवित परमेश्वर है, वही पिता सर्वशक्तिमान एलोहिम, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, विश्व का रचयिता और शासक है। वे यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता है। यहाँ पर हमारा भी प्रेसिडेंट डेविड ओ मैकेंकी ने शिक्षा दी थी कि हमारी पहली मूल सच्चाई यीशु मसीह द्वारा वह ये था कि पीछे ऊपर और सब जगह परमेश्वर पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। हम पिता परमेश्वर की प्रकृति के बारे में अधिकतर जानते हैं और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की सेवकाई और शिक्षा से हम सीख सकते हैं। जैसे एल्डर जेफरी आर हॉलर ने सिखाया था, यीशु की सेवकाई का एक प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य को प्रकट करना कि परमेश्वर हमारे अनंत पिता किस तरह के हैं। हम प्रकट करता है, हमें व्यक्तिगत बनाता है उसके पिता, हमारे स्वर्ग में पिता और वास्तविक सच्चाई का। बाइबल में एक प्रेरित गवाही है कि यीशु उसके पिता की छाया है, जिसमें केवल विस्तृत यीशु की खुद की शिक्षा है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। पिता परमेश्वर हमारी आत्माओं का पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वह हमसे प्यार करता है और जो कुछ भी वह करता है हमारी अनंत लाभ के लिए करता है। वह उद्धार की योजना का लेखक है और यहाँ तक उसकी सामर्थ के द्वारा कि वह उसके उद्देश्य को उसके बच्चों की वास्तविक महिमा के लिए पाते हैं। नाश्वरत से अति दिखने वाला ईश्वर तत्व का सदस्य यीशु मसीह है। महान सिद्धांत का बयान उसकी घोषणा करता है 1909 में, परमेश्वर के पुत्रों में वह पहला जन्मा है, आत्मा में पहला इकलौता और मांस में सिर्फ इकलौता। पुत्र सब में महानतम पिता द्वारा पिता की योजना को करने वाला था, पिता की सामर्थ्य का अभ्यास करके अनगिनत संसार की रचना की और परमेश्वर को के बच्चों को उसके पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु से बचने और उसके प्रायश्चित द्वारा पाप से बचाने वाला है। यह देवी बलिदान सच्चाई को सारी मानव जाति इतिहास का माध्यम मध्य क्रिया कहा जाता है। उन अनोखी और पवित्र अवसरों पर जब परमेश्वर पिता ने व्यक्तिगत तौर पर पुत्र से परिचित कराता है, वह कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसे सुनो। इस प्रकार यह यीशु मसीह है यहोवा के रूप में इसराइल का प्रभु परमेश्वर जो उनसे और उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलता है। तो ये है कि जब यीशु उसके पुनरुत्थान के बाद निफाइटियों से मिला, उसने अपना परिचय संपूर्ण पृथ्वी का परमेश्वर के रूप में किया था। तो ये कि यीशु अक्सर मॉर्मन की पुस्तक के भविष्यवक्ताओं से ऐसे ही बात करता और अंतिम दिनों के संतों से पिता पुत्र के रूप में और शिष्य के प्रथम अध्यक्ष 100 सालों से पहले परित होकर संतानों का व्याख्या करता है। ईश्वर का तीसरा सदस्य पवित्र आत्मा है, संतप के रूप में पवित्र आत्मा भी है, प्रभु की आत्मा और दिलासा देने वाला भी है। ये ईश्वर का सदस्य है जो कि व्यक्तिगत प्रकटीकरण का एजेंट है, आत्मा का एक पात्र के रूप में वे हमारे साथ रह सकता है और हमारी धरती पर हमारे पिता और पुत्र और परमेश्वर के बच्चों के बीच वार्ताकार की विशेष भूमिका निभाता है। बहुत से धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि उनकी सेवकाई पिता और पुत्र की गवाही देना है। उद्धारकर्ता वादा करता है कि सहायक सारी बातें सिखाएगा, सारी बातों को स्मरण कराएगा और सारे सच में मार्गदर्शन कराएगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे सत्य और गलत के बीच जानने में मदद करता है, हमारे बड़े निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है और हमारी नायक सहायता नाश्वरता की चुनौतियों के द्वारा करता है। इसका यह भी मतलब है कि द्वारा जिसमें हम पवित्र होते हैं वह ही पाप से साफ और शुद्ध करता है। तो कैसे इस स्वर्गीय सिद्धांत का प्रकटीकरण ईश्वरत्व और उद्धार की योजना के बारे में हमें हमारी आज की चुनौतियों को समझाता है? क्योंकि हमारे पास ईश्वरत्व की और सबसे संबंध की सच्चाई है, जीवन का उद्देश्य और अनंत नित्य की प्रकृति है। हमारे पास खास रोड मैप है और नाश्वरता से होकर जाती अश्वस्थ हमारी यात्रा। हम जानते हैं कि हम किसकी और क्यों उपासना करते हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। हम जानते हैं कौन इसे संभव करेगा और हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए वास्तविक आशीषों का आनंद लेने के लिए, जो कि परमेश्वर की उदार की योजना के द्वारा आती है। हम कैसे ये सब जानते हैं? हम परमेश्वर का, उसके भविष्यवक्ताओं और हम सब व्यक्तिगतों के प्रकटीकरण द्वारा जानते हैं। सिद्ध करता है कि प्रेरित पौलुस वर्णन करता है जैसे और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए कि आवश्यकता ज्ञान से अधिक प्राप्त करना है। हमारे सुसमाज का मानने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हमें करना और सोचना चाहिए कि हम उसके द्वारा परिवर्तित हुए हैं। संसार की संगठनों के विपरीत जो हमें कुछ कर जानना सिखाते हैं, उद्धार की योजना और यीशु मसीह के सुसमाचार की चुनौतियां हमें कुछ बनाती हैं। जैसे अध्यक्ष थॉमस एमॉनसन ने हमें पिछले जनरल सम्मेलन में सिखाया था, उद्धार की योजना के लिए विशेष है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। बिना उसके प्रायश्चित बलिदान के सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये पर्याप्त नहीं, इसलिए केवल उसमें और उसकी सेवकाई में विश्वास करें। हमें काम करने और सीखने, खोजने, प्रार्थना करने, पश्चाताप और सुधारने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के नियमों को जानने और जीने की आवश्यकता है। हमें उसकी बचाव धर्म विधियों को पाने की जरूरत है। सिर्फ यही सब करने से हमें सच्चाई अनंत आनंद प्राप्त करेंगे। मेरी आत्मा की गहराई से और सारी विनम्रता से मैं गवाही देता हूँ महान उपहार का, जिसे हमारे पिता की योजना का हमारे लिए है। यही एक संपूर्ण रास्ता है शांति और आनंद दोनों का यहाँ पर आने वाले संसार में। मैं अपनी गवाही को हमारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष से जोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में और पिता हमें मार्गदर्शन दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमें सब कुछ संभव किया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
are grateful.
हम मॉर्मन गायक मंडली के खूबसूरत संगीत को इस सुबह के अधिवेशन में देने के लिए उनके आभारी हैं। हमारे समापन वार्ताकार इस अधिवेशन के लिए प्रेसिडेंट डीटर एफ उक्डोर्फ, प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार होंगे। प्रेसिडेंट उक्डोर्फ की टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन गीत गाकर करेंगी, हाई ऑन द माउंटेन टॉप। समापन प्रार्थना फिर एल्डर रिचर्ड जे मेन्स सत्तर की अध्यक्षता के द्वारा दी जाएगी। प्रेसिडेंट उक्डोर्फ।
मैं विशेषकर हमारे प्रिय भविष्यवक्ता भविष्य थॉमस एस मॉन्सन का आभारी हूँ। हम आपके वचनों सभा ज्ञान को अपने हृदय से लगाएंगे। हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं और हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सालों पहले जब मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में स्टेक अध्यक्ष था, एक उदास लेकिन प्रिय बहन स्टेक सभा के बाद मुझे मिली। क्या यह बहुत बुरी नहीं है, वह बोली। आपकी वार्ता के बीच मैं कम से कम चार या पांच लोग सो रहे थे। मैंने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गिरजे की नींद सबसे स्वास्थ्य वर्धक नींद है। मेरी पत्नी ने इस बातचीत को सुना। बाद में उसने मुझसे कहा, यह सबसे उत्तम जवाब था। सैकड़ों साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था जिसे महान जागृति कहा गया था, जो देश में हर तरफ फैल गया था। इसका मुख्य विषय आत्मिक रूप से सोने वाले लोगों को जगाना था। बालक जोसेफ स्मिथ प्रचारकों की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था, जो कि उसका जागृति का हिस्सा था। इसी कारण उसने प्रभु की इच्छा को जानना चाहा था। मैं प्रचारक नाटकीय ढंग से प्रचार करते थे। ये लोग नरक के भय से डराते थे, जो कि पापियों के लिए बनाया गया था। नहीं, इन नए प्रवचनों में भी लोगों को सोने नहीं दिया था, लेकिन इनके कारण थोड़े भयानक सपने आने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इनका उद्देश्य और स्वरूप लोगों को पश्चात करने के लिए डराना था। ऐतिहासिक रूप से भय को अक्सर इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि लोग गतिशील हो जाएं। माता पिता इसे अपने बच्चों के साथ, मालिक अपने कर्मचारियों के साथ और राजनेता मतदाताओं के साथ इसका प्रयोग करते हैं। लगता है भय के कारण लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं। विज्ञापन विशेषज्ञ भय की इस शक्ति को जानते थे और अक्सर इनका उपयोग करते हैं। इसलिए कुछ विज्ञापन अप्रत्यक्ष संदेश देते हैं कि हमें सही ब्रांड नाश्ते का अनाज नहीं, फॉर्म वीडियो गेम खरीदा तो हम कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने और अकेले मरने और दुखी रहने के खतरे में पड़ सकते हैं। हम इस पर हंसते और सोचते हैं कि हम इस प्रकार के बहकावे में नहीं पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी हम फंस जाते हैं। बुरा तब होता है जब हम कभी कभी दूसरों को अपना काम करवाने के लिए इसी प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। आज मेरे संदेश के दो उद्देश्य हैं। पहला, कि हमें मनन और विचार के लिए विवश करना कि हद तक हम दूसरे को एवं स्वयं को प्रेरित करने के लिए भय का उपयोग करते हैं। दूसरा, अन्य बेहतर तरीके का सुझाव देना।
पहले हम भय के साथ समस्या का जिक्र करेंगे। आखिरकार हम में से ऐसा कौन है जो भय के कारण बेहतर खाने, सीट बेल्ट पहनने, व्यायाम करने, पैसा बचाने, प्रियजनों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं या पाप से पश्चाताप करने के लिए कभी विवश ना हुआ हो। यह सच है कि भय का हमारे कार्यों और व्यवहारों में शक्तिशाली प्रभाव होता है, लेकिन यह प्रभाव अस्थायी और कमजोर होता है। भय में शायद ही हमारे हृदय को बदलने की शक्ति होती है और यह कभी भी हमें उस रूप में नहीं बदल सकेगा जो अच्छे काम में प्रेम करते हैं और जो स्वर्ग पिता की आज्ञा पालन करना चाहते हैं। वह लोग जो भयभीत होते हैं, हो सकता है कि सही बातें बोलें और सही काम करें, लेकिन उन्हें सही बातों का एहसास नहीं होता। वह अक्सर असहाय और नाराज क्रोध भी महसूस करते हैं। समय के साथ साथ यह अनुभूति अविश्वासी, आज्ञाकारी और विरोधी होने की ओर ले जाती हैं। दुर्भाग्य से नेतृत्व करने की यह गलत धारणा केवल धर्म निरपेक्ष संसार तक सीमित नहीं है। मुझे यह सुनकर दुख होता है कि गिरजे के सदस्य अनुचित दबाव डालते हैं, चाहे अपने घरों में, गिरजे की नियुक्ति में, कार्यस्थलों में या दूसरे के साथ अपनी प्रतिदिन के व्यवहार में। यही लोग हो सकता है कि दूसरों को धमकाने की निंदा करते हैं, फिर भी ये इसे अपने भीतर नहीं देख पाते। वे अपने मनमाने ढंग से नियमों का पालन करने की मांग करते हैं। जब दूसरे इन बेहतरीन नियमों का पालन नहीं करते, तो इस प्रकार के लोग उन्हें मौखिक रूप से, भावनात्मक ढंग से और कभी कभी शारीरिक रूप से दंड देते हैं। प्रभु ने कहा कि जब हम मनुष्य की संतान की आत्माओं पर नियंत्रण करने या वश में करने का दबाव डालने के लिए किसी प्रकार को अनुचित तरीके का उपयोग करते हैं, तो स्वर्ग स्वयं को बंद कर देता है और ईश्वर की आत्मा दुखी होती है। ऐसे क्षण हो सकते हैं जब हम अपने कामों को यह विश्वास करते हुए उचित ठहराना का लालच होता है कि इसका उद्देश्य उचित है। हम यह भी सोच सकते हैं कि नियंत्रण करने, बहकाने और कठोर होने से दूसरों का भला होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसे स्पष्ट किया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक अवसर पर उद्धारकर्ता सामरियों के गांव, क्या यह सच है कि वह नफरत करता है और उत्तेजित होता है और हमारी ओर ऐसा देखता है कि मानो हम किसी काम से नहीं सिवाय आग से फेंके जाने के, जैसा कि 18वीं शताब्दी का एक प्रचारक कहता है। जितना अधिक हम स्वर्गीय पिता को जानता हूँ, उतना ही कम से कम हम क्रोधित, हिंसक और प्रतिशोधी परमेश्वर के रूप में देखता हूँ। उसका एकमात्र उद्देश्य, उसका काम और उसकी महिमा हमारा सलाहकार बनना है, हमें उत्कृष्ट बनाना और हमें उसकी परिपूर्णता की ओर ले जाना। परमेश्वर ने मूसा से लेकिन वो एकमात्र हमारे व्यवहारों को बदलने से अधिक चाहता है। वह चाहता है कि हम अपनी पुरानी प्रकृति को बदलें। वह चाहता है कि हम अपने हृदय को बदलें। उसकी इच्छा है कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। मसीह में नए प्राणी इतने शुद्ध और बेदाग कि हम पाप की तरह केवल घृणा से देखें। वह चाहता है कि हम आगे बढ़े और लोहे की छड़ को मजबूती से थाम लें, अपने भय को पराजित करें और बहादुरी से आगे कदम बढ़ाएं और सीधे और संकरे मार्ग में चलते जाएं। वह इसे हमारे लिए कहता है कि क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि यह सुख मार्ग है। वह चाहता है कि हम उसके प्रिय संतान अनंत काल तक खुश रहें। तो परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को आज के समय में उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है? उसने हमें यह सही मार्ग दिखाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। परमेश्वर हमें अनुनय, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सच्चे प्रेम के द्वारा प्रेरित करता है। परमेश्वर हमारी ओर है, वह हमसे प्रेम करता है और वह हम सबको कठोर हम सब और जब हम ठोकर खाते हैं तो वह चाहता है कि हम उठ खड़े हों और फिर से कोशिश करें और मजबूत बने। हमारा स्वर्ग पिता अप्रत्याशित निर्दयी प्रवृत्ति का नहीं है। वह अपने बच्चों को कुचलने के लिए किसी गलती को खोजने का इच्छुक नहीं है। वह अपने बच्चों को कुचलने और अनंत दंड से उनकी निंदा करने के लिए किसी बहाने के लिए उत्सुक नहीं है, परंतु हमें सांसारिक भय से भयभीत नहीं करना चाहता है। वह हमारा सलाहकार है। वह हमारी महान और मूल्यवान आशा है। निश्चित रूप से हमारा संसार हमसे अपूर्ण रहा है, आगे भी रहेगा। बहुत से निर्दोष लोग प्रकृति परिस्थिति के साथ साथ मनुष्य की निर्दयता के शिकार होते हैं। हमारे समय में भ्रष्टाचार और दुष्टता अलग और सतर्क करने वाली है, लेकिन इन सब के होते हुए भी मैं वर्तमान के अलावा संसार के इतिहास में किसी भी दूसरे दौर में रहना पसंद नहीं करूंगा। हम अभूतपूर्व संपन्नता, ज्ञान और लाभदायक समय में रहने के लिए अत्यधिक आश्रित हैं। सबसे अधिक हमारे पास यीशु मसीह के सुसमाचार की परिपूर्णता की आशीष है, जो हमें संसार के खतरों और विशिष्ट दृष्टिकोण देती है और हमें बताती है कि इनसे कैसे बचना या व्यवहार करना है। जब मैं इस आशीष के विषय में सोचता हूं, मैं अपने घुटनों के बल झुकना चाहता हूं और अपनी आवाज को कभी समाप्त ना होने वाले हमारे स्वर्गीय पिता की प्रशंसा और आभार में उठाना चाहता हूं। मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अपने बच्चों को भयभीत करना या संसार की बुराइयों पर निर्भर रहने देता चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने हमें आनंदित होने के बहुत से कारण दिए हैं और उसने अक्सर हमें याद दिलाया, हिम्मत रखो, घबराओ नहीं और ढांढस बांधो।
And to fear not, little flock. Brothers and sisters, we are the Lord's little flock.
हम अंतिम दिनों के अंत संत हैं। उद्धारकर्ता के आगमन के लिए उत्सुक रहने और उसे प्राप्त करने के लिए संसार को तैयार करने की प्रतिबद्धता हमारे नाम में निहित है। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और आत्मा की आवाज पर ध्यान देने से लैस किया गया है, ताकि हम मानव पुत्र के आगमन के समयों और चिन्हों को जान सकें। इसलिए हम संसार की चुनौतियों के प्रति लापरवाह नहीं हैं और ना ही हम अपने समयों को कठिनाइयों से अनजान हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपने आप पर या दूसरे पर भयभीत होने का बोझ डाल दें। अपनी चुनौतियों की विशालता पर ध्यान देने के साथ स्थान पर क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम परमेश्वर की अनंत महानता, भलाई और असीम शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें।
Would it not be better to focus on the infinite greatness, goodness, absolute power of our God, and trusting Him, and preparing with a joyful heart for the return of Jesus Christ as His covenant people?
उसके अनुबंधित लोगों के रूप में हमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। इसके बजाय हमें परमेश्वर में विश्वास, साहस, दृढ़ता और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं, अपने समय के लोगों को मूसा की सलाह अभी भी लागू होती है। प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम शिष्यता
face of fear, let us find our courage, muster our faith.
भय का सामना करने पर आओ हम अपने साहस को प्राप्त करें, अपने विश्वास से मजबूत हों और इस प्रतिज्ञा में निर भरोसा रखें कि जितने हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाए गए हैं कोई सफल ना होंगे. प्रभु के सेवकों की यही विरासत है. क्या हम संकट और मुसीबत के समय में ना रहें? अवश्य ही हम कठिन समय में रह रहे हैं. परमेश्वर ने स्वयं कहा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. क्योंकि परमेश्वर वादा किया कि सब बातें मिलकर हमारी भलाई के लिए होंगी यदि हम सीधाई से चलते हैं. परिपूर्ण प्रेम भय को दूर करता है.
If you walk uprightly, therefore, let us set aside our fears and live instead with joy, humility, hope, and a bold confidence that the Lord is with us. My beloved friends, my dear brothers and sisters in Christ, if we ever find ourselves living in fear or anxiety,
मसीह का परिपूर्ण प्रेम
और स्थिति में पाते हैं और हमारे व्यवहार और हमारे काम दूसरों को भय देते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी आत्मा की पूरी ताकत से ताकि हम अपने इस भय से दूर हो सकें और दिव्य रूप से भय दूर करने के दवाई को लें जो कि यीशु मसीह का शुद्ध लाभ है, क्योंकि परिपूर्ण लव भय को दूर करता है. मसीह का परिपूर्ण लव सारे लालचों को दूर करता है, किसी को परेशान करना, किसी को दबाना. मसीह का परिपूर्ण लव हमें दीनता बनने और सावधानी से जीने और साहस और हमारे लोगों के लिए, हमारे परमेश्वर मसीह के लिए. मसीह का परिपूर्ण लव हमें आत्मविश्वास देता है ताकि हम अपने डरों से आगे बढ़ सकें और हम अपने पूरे भरोसे को और परमेश्वर स्वर्गीय पिता की ताकत और भलाई में लगाएं और उसके सन जीसस यीशु मसीह में. हमारे घरों में और हमारे काम की जगहों में, हमारे चर्च की नियुक्तियों में, हमारे हृदयों में, हमारे सब जगहों पे हम अपने डर को दूर करें और मसीह के परिपूर्ण प्रेम को उसमें डालें. मसीह का प्रेम भय को दूर कर देगा और विश्वास में बदल देगा. उसका प्रेम हमेशा हमें इस योग बनाएगा कि हम विश्वास और भरोसे को पहचान सकें. हम अपने विश्वास को जो स्वर्ग के पिता में और उसके दिव्य योजना, उसके सुसमाचार और उसकी आज्ञाएं, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने साथियों से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हमें आशीष देता है, ना कि बोझ. मसीह का प्रेम हमेशा हमें थोड़ा दयालु और अधिक समा करने वाला और मोर अधिक ध्यान रखने वाला और मोर अधिक समर्पित अपने काम के लिए बनाएगा. जब अपने हृदयों को यीशु मसीह के प्रेम से भरते हैं, हम जाग जाएंगे, हमारी आत्मिक ताजगी हमारे अंदर आएगी और हम आनंद से चलेंगे, विश्वास से चलेंगे और जागृत होकर एक जीवन प्रकाश और महिमा के हमारे यीशु मसीह प्रिय यीशु मसीह की जीवन की लाइट में चलेंगे. मैं प्रमाणित करता हूं कि अपोस्टल जॉन के साथ परमेश्वर में यीशु मसीह के प्रेम में कोई भय नहीं है. भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है. वह आपको अच्छी तरह से प्रेम करता है. वो जानता है आपके भविष्य में क्या है. वह चाहता है कि आप डरे नहीं लेकिन विश्वास करें, अब हमेशा उसके प्रेम से बंधे रहें. यह मेरी प्रार्थना और आशीष है यीशु मसीह के नाम में. आमीन.
our beloved Heavenly Father.
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
we express our sincere gratitude this morning.
हम इस सुबह आपके सामने अपना आभार प्रकट करते हैं जो आपने हमारे को ये मौका दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए इस सैबत डे के लिए, इस जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए. हम आपके आभारी हैं परमेश्वर, जो हमने संगीत सुना है टैबरनेकल क्वायर से. हम आपके आभारी हैं परमेश्वर उन तमाम वचनों के लिए जो हमने आपके पुरोहितों द्वारा सुने. और हम खासतौर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो भी हमने सुना अपने भविष्य वक्ताओं से. हम परमेश्वर हमें प्रेजेंट मॉनसून से प्रेम करते हैं. हम बहुत आभारी हैं इसके. हम बुक मोमेंट के लिए धन्यवाद करते हैं और खासतौर से धन्यवाद करते हैं टेंपल के लिए. हम सस्टेन करते हैं उनकी और हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम हमेशा पवित्र रहें और हमेशा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाएं, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे चुनाव कर सकें, ताकि हम आपके पास आ सकें सेलेस्टियल किंगडम में. हम आपसे प्यार करते हैं और आपके पुत्र से प्यार करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं आपके महिमा के लिए और आपके परम यीशु मसीह के महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.